तो आज बहुत पवित्र दिन है। आप लोग जानते हैं क्या है? हरि बोल। श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर का क्या है? आविर्भाव दिवस है, तो उनके विषय में हम सुनेंगे समाधि पुस्तक से। ये 12 जो भगवान के विशेष गोपाल हैं, उनके संगी हैं, और कोई नहीं आने वाला, सब इतने हैं। नहीं और कोई है आने वाला? आते रहेंगे बाद में बाद में आते रहेंगे। भगवान के ब्रज लीला में जो विशेष 12 गोपाल हैं, VIP गोपाल, क्या? अरे वो 12 गोपालों में से एक हैं ये, है ना? तो इनकी लिस्ट है 12 गोपालों में से। अभिराम गोपाल भगवान के जो संगी सखा हैं, अभिराम गोपाल, वो गौर लीला में अभिराम गोपाल थे और ब्रज लीला में थे श्री रामा सखा। सुंदरानंद गौर लीला में, ब्रज लीला में सुदामा सखा। कमलाकर पिपलाई गौर लीला में और ब्रज लीला में महाबल सखा। गौरीदास पंडित गौर लीला में, ब्रज लीला में सुबल सखा। परमेश्वर दास गौर लीला में और ब्रज लीला में अर्जुन सखा। धनंजय पंडित गौर लीला में, ब्रज लीला में वसुदामा सखा। महेश पंडित गौर लीला में और ब्रज लीला में महाबाहु सखा। पुरुषोत्तम दास ठाकुर गौर लीला में, ब्रज लीला में स्तोक कृष्ण, क्या नाम? स्तोक कृष्ण सखा। काला कृष्ण दास गौर लीला में और ब्रज लीला में लवंग सखा। पुरुषोत्तम नागर गौर लीला में और ब्रज लीला में दामा सखा। और धारण दत्त गौर लीला में और ब्रज लीला में सुबाहु सखा। श्रीधर खोल बेचा गौर लीला में और ब्रज लीला में कुसुमासव सखा। ये 12 सखा। तो उन 12 सखाओं में से जो कौन से सखा? स्तोक कृष्ण सखा, वो हुए गौर लीला में पुरुषोत्तम दास ठाकुर। आज उनका क्या है? आविर्भाव। तो उनके विषय में लिखा है, श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर निरंतर ध्यान करते थे और सेवा करते थे नित्यानंद प्रभु के चरणों में। नित्यानंद प्रभु के स्तोक कृष्ण, पुरुषोत्तम दास ठाकुर स्तोक कृष्ण। पुरुषोत्तम नागर अलग है, देखना पड़ेगा। श्री दामा सखा अभिराम गोपाल, श्री दामा, सुदामा और दामा अलग अलग हैं, तीन है दाम। कनु ठाकुर उनके जो पुत्र थे वो इतने महान भक्त थे कि भगवान कृष्ण हमेशा उनके शरीर में निवास करते थे। कौन? कनु ठाकुर, इनके ही पुत्र थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे। जब कनु 5 वर्ष के थे, माता जहनवा उनको वृंदावन ले गई। माता जहनवा कौन है? नित्यानंद प्रभु की शक्तियाँ हैं। वृंदावन ले आई, गोस्वामियों ने आनंद पूर्वक इस बच्चे का स्वागत किया। जब देखा कि इस बच्चे में शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं, गुरु वृंदावन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर भगवान बलराम के 12 गोपालों में से एक के रूप में सेवा करते हैं। कौन है? स्तोक कृष्ण। इनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव की महाभूत की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 7वां स्कंध अध्याय 6, अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। मेरे पीछे बोले, विद्वान अपेतम दनुजा कुटुंबम कृष्णं स्वलोकाय न कल्पते वै यस्य पारक्य विभिन्न भावः तमः प्रपद्येत यथा विमूढः हे मित्रो हे असुर पुत्रो ये बिंदी जो लगी है ना वो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि संबोधन में मित्रों नहीं होता है मित्रो असुर पुत्रों नहीं होता है असुर पुत्रो संबोधन है ना ये इसमें बिंदी जो लगी है नहीं होना चाहिए हे मित्रो हे असुर पुत्रो इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्तियों में भी यह विचार करने की प्रवृत्ति होती है यह मेरा है और यह पराया है। इस प्रकार वे सीमित पारिवारिक जीवन की धारणा में अपने परिवारों को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में लगे रहते हैं मानो अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हों। वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते प्रत्युत वे मोहग्रस्त तथा अज्ञान से पराभूत हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले ये प्रसंग हम समझेंगे। आप लोग तो जानते हैं कथा प्रसंग क्या चल रहा है। तो प्रह्लाद महाराज गुरुकुल में हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद महाराज को मार डालने के लिए सब प्रकार के उपाय किए। वास्तव में हिरण्यकश्यप को अपने हाथ से प्रह्लाद महाराज को नहीं मारना चाहता क्योंकि तो पिता का हृदय है तो पिता के हृदय में कुछ स्नेह होता है इसलिए वो अपने हाथ से नहीं मारना चाहता था। हाँ लेकिन हाँ जो कृष्ण की भक्ति की जो भावना है ये जहर के समान है और अन्य असुरों में अब ये फैलेगी ये तो सुधर सकता नहीं है। हाँ ये तो कृष्ण का भक्त है ऐसा पक्का ये तो सुधर सकता नहीं है। तो अब ये जो है दूसरे असुरों में भी फैलाएगा कृष्ण की भक्ति तो अपने ही शरीर का अंग जैसे अगर बेसैला हो जाए उसको काटना ही पड़ेगा। हाँ अगर उसका पिस दूर नहीं कर सकते तो उंगली ही हो तो काटना पड़ेगा। अपने हाथ से नहीं काटा अपने हाथ से नहीं काटी जाती अपनी उंगली तो कटवानी पड़ती है। तो उसने कहा कि मेरी आंखों से दूर ले जाओ मैं देख भी नहीं सकता है ना। बड़े कष्ट से उसने आदेश दिया कि इसको जो है वध कर दो किसी भी उपाय से इसका वध कर दो क्योंकि आसुरी समाज में ये बहुत ही खतरनाक बच्चा है ये तो असुर बन नहीं सकता है और ये जो है अब आसुरी समाज में कृष्ण भक्ति का भाव फैलाएगा तो इसलिए मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इसको खत्म कर दो। तो फिर असुरों ने जो है सब प्रकार के प्रयास किए जब प्रह्लाद को नहीं मार पाए और हिरण्यकश्यप को पता चला तो अब वो प्रह्लाद से उसको खुद ही भय पैदा हो गया और उसने प्रह्लाद के पास ना तो जाने की इच्छा की ना प्रह्लाद को अपने पास बुलाने की इच्छा की बल्कि उसको लगा कि अगर वो ये मेरे सामने आएगा तो इसको जो है याद आएगा कि मेरे आदेश से उसको मारने का प्रयास किया गया और ये मुझे मार सकता है इसमें मतलब ऐसी शक्ति है कि शायद मुझे ये मार सकता है। तो हिरण्यकश्यप बहुत चिंतित हो गया है ना। तो संडमर के जो हिरण्यकश्यप के गुरु पुत्र थे उन्होंने कहा कि आपको तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं आपके सामने तो बड़े बड़े लोकपाल भी कांपते हैं और जहाँ तक बच्चे की बात है बच्चे तो जो है बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कुछ है, ऐसा है नहीं कि मतलब इनको कुछ याद रखा जाए लेकिन इस प्रह्लाद के साथ कैसा व्यवहार किया जाए अब इस विषय में निर्णय करने वाले कौन हैं हमारे पिता आपके गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जब तक नहीं आते हैं तब तक इसको बांध करके गुरुकुल में हम रखेंगे कि ताकि भाग ना जाए और शुक्राचार्य का जो है अब प्रतीक्षा करेंगे इंतजार करेंगे। तो इस तरह से प्रह्लाद को जो है गुरुकुल में रखा गया था और गुरु जो है प्रहलाद को हमेशा डांटते रहते थे, फटकारते रहते थे, क्योंकि बड़ा खतरनाक बच्चा है ये, तो प्रहलाद को है ना। और जो बाकी जो बच्चे थे उन्हें कोई ज़्यादा ज्ञान था नहीं, तो जिस समय गुरु जो है अवकाश में चले जाते हैं तो बच्चों को जो है अवसर मिलता है खेलने का, तो प्रहलाद को वो खेलने के लिए बुलाते हैं। और बच्चे लोग सोचते हैं कि प्रहलाद बड़ा बेचारा दुखी है क्योंकि गुरु जी हमेशा उसको डांटते फटकारते रहते हैं, अभी गुरु जी नहीं है तो इसको हम लोग जो है कुछ अपने साथ खिलाएंगे और इसका मनोरंजन होगा। तो उनको दया आई, प्रहलाद को बुलाते हैं है कि आओ अभी तो जो है अच्छा अवसर है, खेलो हमारे साथ। लेकिन प्रहलाद जी को कोई दुख नहीं था, वे तो अपने अंदर ही अंदर प्रसन्न थे। बच्चे तो सोचते थे कि प्रहलाद को जो है बड़ा दुख, वो अंदर ही प्रसन्न थे। और प्रहलाद जी वन असल बालकों पर दया आई, वो प्रहलाद के ऊपर दया कर रहे हैं तो बुला रहे खेलने के लिए, और प्रहलाद जी उन पर दया करते हैं तो उनको बुला रहे हैं हाँ कि आओ आओ संदेश तुम अच्छा अवसर है। तो जो असुर बालक हैं वो सोचते हैं अच्छा अवसर है खेलने का, आओ प्रहलाद। और प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा अवसर है कुछ संदेश सुनने का, आ जाओ आ जाओ हाँ, अभी गुरु जी नहीं है तो कुछ संदेश सुन लो। तो वो अवसर जो है मिला है प्रहलाद जी को कि वो कृष्ण भक्ति का संदेश दे रहे हैं, है ना। तो काफ़ी विस्तृत शिक्षा उपदेश प्रहलाद महाराज की बहुत विस्तृत शिक्षा है असुर बालकों को। तो असुर बालकों को जो है कुछ पता था नहीं कि सही गलत क्या है ना, इतने परिपक्व वो थे नहीं असुर भाव में। तो प्रहलाद से जो है वो सुनने के लिए बैठ गए और प्रहलाद जी जो है उनको उपदेश देने लगे। तो आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं, विद्वान अपि इत्थम धनुजा कुटुम्बम। विद्वान अपि, विद्वान अपि का मतलब जानते हुए भी, विद्वान का मतलब है कि जो जानकार हो। विद्वान अपि जानते हुए भी, धनुजा संबोधित कर रहे हैं किनको, असुर बालकों को, किस नाम से, धनुजा धनु के पुत्रों। तो यहाँ जो है असुर समाज में दो प्रकार के जो असुर हैं, एक तो है धनुजय, दूसरे हैं दितिज। दिति के पुत्र ये भी कश्यप की पत्नी है और धनु भी कश्यप की पत्नी है। तो दिति के जो पुत्र हैं या उनके वंश में, दिति के वंश में जितने संतान हैं वो सब जो है दितिज कहलाते हैं या दैत्य कहलाते हैं, है ना। तो ये असुर हैं। और धनु के वंश में भी जितने पुत्र हैं या उनके संतान हैं तो वे भी असुर हैं। तो ये दोनों जो है मतलब मिश्रित हैं, असुरों का जो समाज है इसमें दोनों का मिश्रण है, धनुजा और दितिजा, या दैत्य और दानव। धनु से दानव बनता है, धनु के वंश में जितने हैं। तो ये सब जो है मतलब मिश्रित हैं, असुर हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है कभी दैत्य भी बोलते हैं उनको और कभी दानव भी बोलते हैं संबोधन में। तो क्या कह रहे हैं, विद्वान अपि इत्थम धनुजा कुटुम्बम। विद्वान होते हुए भी, जानकार होते हुए भी, हे धनुजो, हे असुर बालको, कुटुम्बम पुष्णन। कुटुम्बम पुष्णन मतलब कुटुम्ब को पाते हुए, पोषण करते हुए। कुटुम्बम पुष्णन स्वलोकाय न कल्पते। स्वलोकाय अपने स्वार्थ का जो है वो विचार नहीं कर पाता है, स्वलोकाय न कल्पते, अपने स्वार्थ का विचार नहीं कर पाता है, अपने कुटुंब का पेट भरने में लगा रहता है, जानते हुए भी अपने स्वार्थ का विचार नहीं कर पाता ना। स्वलोकाय न कल्पते वह, यह सुई या पारक के विभिन्न भाव। जो व्यक्ति सुई और पारक के विभिन्न भाव में रहता है, विभिन्न भाव माने भेदभाव, विभिन्न भाव सुई और पारक के, ये अपना और ये पराया, ये मेरा है और ये पराया है। यह सुई पारक के विभिन्न भाव तमहा प्रपद्येत। तमहा प्रपद्येत अंधकार में जाता है, तमहा प्रपद्येत अंधकार की शरण लेता है, अंधकार में आश्रय लेता है, तमहा प्रपद्येत। यहाँ नरक भी कह सकते हैं, नरक की प्राप्ति करता है। तमहा प्रपद्येत यथा विमूढ़, यथा विमूढ़ जैसे महामूर्ख। विमूढ़ का मतलब है बहुत मूर्ख, जिस प्रकार से बहुत मूर्ख है उसी प्रकार से शिक्षित भी, अशिक्षित और शिक्षित दोनों एक ही प्रकार के, है ना। मतलब कृष्ण भावनामृत के बिना जो है, जो पढ़ाई भी है शिक्षा भी है, उसका भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्या है, देहात्म बुद्धि है, मैं शरीर हूँ, है ना, और मैं शरीर हूँ तो फिर ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरी जाति है, ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है। इसलिए अनुवाद में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कुटुंबम, कुटुंब का जो है मतलब कुटुंब का भरण पोषण करता है, तो परिवार के सदस्य या दूर के लोग, दूर के लोग माने जाति है, तो उसमें काफ़ी मतलब व्यापक उसकी दृष्टि होती है, केवल एक सीमित परिवार नहीं है, जाति, जाति में काफ़ी मतलब लोग आ जाते हैं, या समाज, काफ़ी लोग आ जाते हैं, ये मेरा समाज, या राष्ट्र है, राष्ट्रकुलों के लोग हैं, है ना, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, यहाँ तक कि देश की भक्ति, कोई देश का भक्त है, कोई मानव सेवा मनुष्य जाति का जो है भक्त है, मनुष्य जाति का जो है वो भला करना चाहता है, है ना, तो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति, अनेक प्रकार की भक्तियाँ, सब ये क्या है, देहात्म बुद्धि पर आधारित है, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। मानव समाज में मनुष्य को शिक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं, किंतु पशु समाज में ना तो ऐसी व्यवस्था है, ना ही पशुओं को शिक्षित किया जा सकता है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, मानव समाज में मनुष्य को शिक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं, और पशु समाज में ना व्यवस्था है, ना पशुओं को शिक्षित किया जाता है, है ना, लेकिन लाभ क्या है, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। प्रभुपाद क्या कहते थे कि ये लोग जो है शिक्षित पशु हैं, वे अशिक्षित पशु हैं, चार पैर के पशु हैं, सींग है और पूंछ है, ऐसे पशु हैं, और ये दो पैर के पशु हैं, शिक्षित पशु हैं, बिना सींग के, बिना पूंछ के पशु हैं, है ना, लेकिन है क्या पशु, शिक्षित पशु, पॉलिश्ड एनिमल, सुसंस्कृत पशु, लेकिन है पशु। तो मतलब जब तक कृष्ण का विज्ञान कोई व्यक्ति नहीं सीखता है, तब तक वो क्या है, पशु ही, है ना। आत्मा का भी ज्ञान नहीं होता है कि इस शरीर को छोड़ दिया है, हम दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे, तो आजकल की शिक्षा में जो है ये बात है ही नहीं, और कितना अज्ञान है। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं कि पशु, पशु के धरातल पर ही, जितनी भी शिक्षा हो, जितनी भी शिक्षा में व्यक्ति ऊँचे उठता जाता है, उतना ही बड़ा वो पशु होता जाता है। मतलब कि पहले हम लोग जो है जब प्राइमरी शिक्षा में थे, तो ये प्रार्थनाएँ हमें सिखाई जाती थी, मैं खुद प्रार्थना गाता था, लीड करता था, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, ये जो है प्रार्थना मैं लीड करता था जब प्राइमरी स्कूल में था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा ऊँची होती जाती है, सब खत्म, सब कल्पना बन जाता है, और पिछड़ापन हो जाता है, सब पिछड़ेपन की बातें हैं, और हम अब एडवांस हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं, किस में एडवांस हो गए हैं, पशु की सभ्यता, एडवांस एनिमल। तो पशु बनने में हम जो है मतलब बहुत आगे बढ़ गए हैं, है ना। तो जितना व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, उतना ही ज़्यादा वो पशु बनता जाता है। इन बातों को क्या मानता है, ये तो जो है मानने की बातें हैं, ना मानो तो कुछ नहीं है, मानो तो होता है, कुछ नहीं हो रहा है ना, ये कल्पना है, इस तरह से मतलब शिक्षा का जो है मतलब क्या दुष्परिणाम है। तो हाँ, प्रभुपाद क्या लिखते हैं आगे, अतएव पशुओं एवं मूर्ख मनुष्यों को विमूढ़ या मोहग्रस्त कहा जाता है, और शिक्षित मनुष्य को विद्वान कहते हैं। तो विद्वान तो है, शिक्षित मनुष्य विद्वान तो है, लेकिन यहाँ प्रहलाद जी क्या कहते हैं, विद्वान होते हुए भी, मतलब भौतिकता में, अगर भौतिक शिक्षा में कोई विद्वान है तो भी वो क्या है, उसका कोई लाभ नहीं, मनुष्य के जीवन का लाभ नहीं जानता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, असली विद्वान वो है जो इस भौतिक जगत के भीतर अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करता है, अपनी स्थिति को, है ना। तो सबसे पहले अपनी स्थिति को समझना क्या है, हम ये शरीर नहीं, है ना। इसलिए प्रभुपाद इस विषय में इतना बोलते हैं, हम ये शरीर नहीं, इस विषय इतना बोलते हैं, कोई भी श्लोक आ जाता है अगर, तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य को छोड़ देंगे, उसमें तात्पर्य जोड़ देंगे, अब गीता के इतने श्लोक हैं है? जिसमें कि भगवान देह और देह का अंतर बताते हैं, एक भी श्लोक प्रभुपाद छोड़ देने और तात्पर्य जो है सिर्फ लंबे लंबे तात्पर्य देते हैं, क्योंकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं, असली विद्वान वो है जिस भौतिक जगत के भीतर अपने स्थिति को समझने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के शरण ली तो उनका पहला प्रश्न था के आमी। सनातन गोस्वामी ने सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के चरणों के शरण ली और पहला प्रश्न क्या था, के आमी, मतलब मैं कौन, मैं कौन है ना। तो इसके तो कई उत्तर हैं, धरातल पर उत्तर हैं इसके, सबसे पहला जो धरातल है इस प्रश्न का, इस प्रश्न के उत्तर का, वो क्या है, हम ये शरीर नहीं है, नित्य मैं नित्य हूँ, मैं नित्य जीव हूँ, मैं नित्य वस्तु हूँ, ये शरीर अनित्य वस्तु है ना, नित्य और अनित्य का भेद समझना, फिर मैं कृष्ण का सेवक हूँ और मुझे धरातल पर हम समझें, फिर पहले सबसे पहले समझना है मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कोई नित्य वस्तु हूँ, कोई ऐसी चीज है जो नष्ट नहीं होती है, शरीर बदलते हैं ना। इस विषय में जो है भगवान गीता में कितने श्लोकों में लगातार बताते हैं और प्रभुपाद तात्पर्य दे दे जाते हैं, हर श्लोक का तात्पर्य दे दे जाते हैं है? फिर दूसरा प्रश्न सनातन गोस्वामी का क्या था, केने आमाय जारे ताप त्रय, केने आमाय जारे ताप त्रय। आप लोग में से कौन लोग बंगाली हैं, कोई बंगाली है, बंगाली क्या क्या है? केने आमाय जारे ताप त्रय, केने या इसका अर्थ ये तो नहीं कौन मुझे तीन तापों से जला रहा है, ऐसा तो नहीं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं दूसरे शब्दों में कि अपनी स्वाभाविक स्थिति जानना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि वे संसार के तीन प्रकार के दुख क्यों उठा रहे हैं। चलो जी ठीक है कि मैं तीन प्रकार के तापों से क्यों जल रहा हूँ, मैं कौन हूँ और संसार के तीन प्रकार के तापों से क्यों जल रहा हूँ, ये मनुष्य जीवन की जिज्ञासा, मनुष्य जीवन की जिज्ञासा है ना। तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, सबसे पहले मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि है ना, मैं नित्य जीवात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ है ना। फिर दूसरा प्रश्न है कि मैं नित्य हूँ, मैं शरीर में नष्ट नहीं होता हूँ, शरीर नष्ट होता है, मैं शरीर बदलता हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता, लेकिन कष्ट फिर क्यों भोग रहा हूँ, फिर मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, तीन प्रकार के कष्ट, मैं इन तीन प्रकार के कष्टों को क्यों भोग रहा हूँ, दूसरा प्रश्न है ना। तो ये प्रश्न मतलब ये क्रम, प्रश्नों का क्रम है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये शिक्षा की विधि है, ये शिक्षा की विधि है ना। तो अभी क्या है कि क्योंकि ये प्रश्न किया नहीं जाता कि मैं कौन हूँ, और कोई करता है ये प्रश्न कि मैं कौन हूँ, तो क्या उत्तर दिया जाता है कि तुम इसके पुत्र हो, तुम इसके पति हो, तुम इसके ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा समाज है, तुम मनुष्य हो है ना, तुम इस नाम के व्यक्ति हो, तुम हिंदू हो, तुम भारतीय हो, ये सब उपाधियों के साथ इसका उत्तर दिया जाता है ना। अब दूसरा प्रश्न जब कोई करता है कि मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, तो इसका उत्तर क्या होता है कि इसको भूल जाओ कि तुम कष्ट भोग रहे हो, ये भूल जाओ इसको, और जितना आप भूलोगे हाँ उतना खुश रहोगे, तो इन बातों को नहीं सोचना कि तुम कष्ट क्यों भोग रहे हो, क्योंकि अंत में मर जाना है, जीवन जितना भी है उसमें भोग लो, सुख पालो और भूल जाओ, तो आगे क्या है, जीवन ही नहीं है हाँ, क्योंकि आगे जीवन ही नहीं है। अगर आगे कोई जीवन ही नहीं है तो फिर तो ठीक ही है, मेरा जीवन ही नहीं है, इस जीवन में ही जो है जो कुछ सुख दुख मिलना है वो मिल जाएगा, तो फिर ठीक ही है, जितना सुख भोग सकते हो भोग लो, ये अंत में कोई मतलब कुछ खाता नहीं है आपका। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये शिक्षा की विधि है। यदि कोई ये ना पूछ करके मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कुकरों शुकरों की ही पशु वृत्ति का पालन करे तो उसकी शिक्षा से क्या लाभ है। तो आज में जो मतलब समाज है वो सुअर और कुत्ते की तरह है, क्योंकि वे जो है जब ये जिज्ञासा नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ, और केवल इतना ही उनका जो है लक्ष्य होता है जीवन का कि इंद्रिय तृप्ति करें, और वो हो गई इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य होगा, है ना। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कुकर शुकरों की भांति पशु वृत्ति का पालन करे तो उसकी शिक्षा से क्या लाभ है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, जीव अपने सकाम कर्म द्वारा रेशम के कीड़े की भांति अपने ही जाल में फंसा रहता है, है ना। तो ये प्रभुपाद बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, रेशम का कीड़ा। तो रेशम का जो कीड़ा होता है तो वो जो है अपने लार से रेशम बनाता है, अपने लार से रेशम बनाता है और उसी के अंदर वो जो है रहता है, है ना। और अगर वो जो है मतलब बाहर आना चाहे तो वो रेशम को खा लेगा और बाहर निकल आएगा, लेकिन चूँकि उसने अपना घर बनाया है रेशम, तो उसमें वो इतना आसक्त होता है कि उसको जो है उसी के अंदर रहता है और उसी के अंदर वो मर जाता है। उसी के अंदर मर जाता है, उसने जो अपना घर बनाया है उसी के अंदर जो है वो मर जाता है, लेकिन वो उसको मतलब बाहर ही नहीं करता। आप समझ रहे। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, उदाहरण बड़ा सीधे है, अपने सकाम कर्मों द्वारा रेशम के कीड़े की भांति अपने ही जाल में फंसा रहता है, है ना। चूँकि उसने अपना घर अपना परिवार ये सब जो बनाया हुआ है और इसमें ही अपनी पहचान कर रहा है कि ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, है ना। तो इनमें जो है अपनी पहचान करके वो अनेक प्रकार के गलत कर्म करता है, है ना। और फिर जब शरीर छोड़ता है, है? तो जिनके लिए उसने बुरे कर्म किए तो उनको तो साथ में नहीं ले जाता, वो तो साथ में जाते नहीं, अपने कर्म ही ले जाता है। तो यहाँ पर यही बताया कि अपना ही जो है उसने क्या है बंधन बनाया, अपना ही बंधन बनाया अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण क्या बंधन बनाया है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये सब है, ये मेरी जाति है, ये मेरा देश है, है ना। और वो पराया, तो वो पराया है तो उसका जो है अनिष्ट करके या उनका शोषण करके मैं अपने शरीर का या अपने परिवार का पोषण करूं, तो शोषण और पोषण ये चलता है उसका, तो शोषण और पोषण में वो लगा रहता है और इस प्रकार से क्या होता है उसके कर्म बनते हैं, कर्म बंधन बनता है। तो प्रभुपाद कहते हैं रेशम का कीड़ा, है ना, रेशम के कीड़े की तरह है, ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मूर्ख लोग सामान्यतया इस भौतिक जगत का भोग करने की प्रबल इच्छा के कारण अपने सकाम कर्म द्वारा बंधे हुए हैं। ऐसे लोग समाज जाति तथा राष्ट्र की ओर आकृष्ट होकर अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और मनुष्य जन्म पाकर उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। यहाँ तक कि जो महात्मा कहलाते हैं जैसे गांधी जी, है ना, तो महात्मा कहलाते हैं, उनका बहुत बड़ा त्याग है, लेकिन वो त्याग भी जो है किस कारण से है, अपने देशवासियों को इंद्रिय तृप्ति की सुविधा देना। आप सुन रहे हैं, गांधी जी का बहुत बड़ा त्याग है ना। किसी बच्चे ने उनको कुर्ता दिया कि गांधी जी आप कुर्ता नहीं पहनते, मैंने आपके लिए कुर्ता सिला है, बड़े प्रेम से सिला है, आप कुर्ता पहने। बच्चे ने जो है बड़ी बोले कि बेटा जब तक प्रत्येक भारतीय को कुर्ता ना मिले तब तक मैं कुर्ता नहीं पहन सकता, हर भारतीय को जो है कुर्ता मिलना चाहिए। बहुत से भारत के जो लोग हैं वो कुर्ता नहीं पहनते, उनके पास कुर्ता नहीं, तो मैं कुर्ता कैसे पहन सकता हूँ, तो कितनी ऊंची भावना है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि ऐसे लोग समाज जाति राष्ट्र की ओर आकृष्ट होकर अपना समय व्यर्थ कमाते हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत अज्ञान है, बहुत अज्ञान है, लेकिन ऐसे देखने में तो लगता है कितना बड़ा त्याग है, कितने बड़े त्यागी हैं, बहुत अज्ञान, ना तो अपना देखते हैं है? कि शरीर छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी कैसी गति, और ना उनकी गति देख रहे हैं कि उन शरीर छोड़ करके वो कैसी गति प्राप्त करें, अज्ञान है ना। लेकिन लगता कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी तपस्या है, बहुत सरल जीवन था, बड़ा सत्य का पालन करने वाले, सब कुछ, सब गुण, इन सब गुणों का जो है कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ आत्मज्ञान नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, और मनुष्य जन्म पाकर उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते, विशेषकर इस कलयुग में बड़े बड़े नेता राजनीतिक, दार्शनिक तथा विज्ञानी मूर्खतापूर्ण कार्यों में ये सोचकर लगे हुए हैं कि ये मेरा है और वो तुम्हारा है। अब ये है कि वो जो चेतना है वो अपनी बड़ी सीमित हो अपने शरीर में कि भाई मैं अपने शरीर का पोषण करूँ, बाकी सबका शोषण करूँ, और किसी की चेतना और विस्तृत है तो अपने परिवार तक उसकी विस्तृत होती चेतना अपने परिवार का पोषण करूँ और सबका शोषण करूँ, है ना। या किसी की चेतना और विस्तृत है तो देश तक है, समाज तक है, या मानवता का पोषण करूँ, है ना, तो पशु पक्षियों का शोषण करूँ, पशु पक्षियों की हत्या करूँ, मानवता का पोषण करूँ। लेकिन ये सब ना प्रभुपाद क्या लेते हैं, मेरा और तुम्हारा, तो द्वेष तो है ही है, राग द्वेष तो है ही है, राग है मानवता की सेवा में राग है, और पशु पक्षियों से द्वेष है तो पशु पक्षियों की हत्या हो। वसुधैव कुटुंबकम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र जिसका चरित्र उदार है उसके लिए पूरी वसुधा कुटुंब है। तो ये जो है ये तो कृष्ण भावना वृत्ति है की बात है ना, ये पूरी वसुधा ही कुटुंब है, क्योंकि कृष्ण का, मैं कृष्ण का अंश हूँ और सब जीव कृष्ण के अंश हैं, तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है कि दूसरे जीवों का शोषण करें और मनुष्यों की सेवा करें। या हम पंजाबी हैं तो हम पंजाबियों की सेवा करें और बिहारियों की ठोकाई करें, है ना। तो ये जो है मतलब ये सब जो चेतना है जितनी भी है, अपने देश की भक्ति है, राष्ट्र की भक्ति है, मानवता की भक्ति है, समाज की भक्ति है, ये सब रूपा क्या लिखते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्यों में ये सोचकर लगे हुए हैं कि ये मेरा है और वो तुम्हारा है, है ना। जैसे हिरण्यकशिपु था तो हिरण्याक्ष का वध किया विष्णु ने, तो विष्णु ने जो है गलत काम किया है, अन्याय किया है, क्योंकि मेरे भाई की हत्या की। अब मेरा भाई कितना भी अन्याय करे वो मेरा भाई है तो सही है, मैं जो कुछ करूँ तो सही है, और बाकी जो है सब गलत, मेरा भाई है तो जो कुछ करेगा वो भी सही है क्योंकि मेरा भाई है। और मैं कौन हूँ, ये शरीर, और ये शरीर तो बदल रहा है अनित्य, अब क्या पहचान है मेरी, ये शरीर बदल रहा है, और जब शरीर बदल जाता है तो मनुष्य शरीर से छिपकली का शरीर मिल जाता है, तो मैं छिपकली हूँ, है ना। अब वो शरीर में भी वो सोचता है कि हमेशा मैं छिपकली था, हमेशा रहूंगा, नित्य बुद्धि है ना, कैसा ज्ञान है कि चाहे चार दिन के लिए उसको छिपकली का शरीर मिला है, लेकिन उसी शरीर में अपनी पहचान वो नित्य समझ कर रहा है कि हमेशा मैं यही था, हमेशा मैं यही रहूंगा। ये जो एक ज्ञान है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, विज्ञानी नाभिकीय अस्त्रों का आविष्कार करते हैं और अपने समाज या राष्ट्र का हित समर्थन करने के लिए बड़े बड़े नेताओं से सहयोग करते हैं। अब यहाँ विद्वान की बात आई ना, प्रधान महाराज विद्वान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विद्वान का मतलब विज्ञान, वैज्ञानिक, तो विज्ञान भी जो है विद्या तो है, तो वो विद्वान तो हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक है ना, लेकिन अज्ञानी है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए अज्ञान में है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि वे नाभिकीय अस्त्र का आविष्कार करते हैं, वे बहुत बड़ी खोज है, नाभिकीय अस्त्र, परमाणु अस्त्र, नाभिकीय अस्त्र ये बहुत बड़ी खोज है, आविष्कार करते हैं, तो बहुत बड़ी विद्या है जो उन्होंने मतलब प्राप्त कर ली, विद्वान है, और अपने समाज या राष्ट्र का हित समर्थन करने के लिए बड़े बड़े नेताओं से सहयोग करते हैं, अपने समाज अपने राष्ट्र का हित हो, है ना, और फिर क्या हो, दूसरे समाज का है, दूसरे समाज राष्ट्र का हित हो, मतलब वहाँ पर विनाश करें, उनका विनाश करें। आगे क्यों पढ़ेंगे। किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि वे अपने तथाकथित उच्च ज्ञान के होते हुए भी कुत्ते बिल्लियों वाली मानसिकता से ग्रस्त रहते हैं। ये सब कुत्ते बिल्ली वाली मानसिकता है ना। जैसे गांधी जी हैं तो उनका मतलब यही नारा था, क्या नारा था, स्वदेशी अपनाओ है ना, और आप जाइए, मतलब ये हमारा देश है, आप लोग जाइए विदेशियों को, मतलब है क्विट इंडिया है ना, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय में मुसलमानों का शासन था, मुसलमानों का शासन था। चैतन्य महाप्रभु ने धर्म की स्थापना की, चैतन्य महाप्रभु ने धर्म की स्थापना की है ना। जहाँ तक मुसलमानों का शासन जो है, अगर धर्म की स्थापना में बाधा डाले तो वहाँ उन्होंने दंड दिया, शामकाजी को दंड दिया है ना। लेकिन वैसे जो है मतलब कुछ है, मतलब वो नहीं किया, विरोध नहीं किया कि तुम लोग भारत छोड़ के जाओ, हमारा देश, भारत देश हमारा है, तुम लोग यहाँ कैसे आए। तो प्रभुपाद कहते कुत्ते की मानसिकता है ये कुत्ता, वो भारत छोड़ो को जो नारा है ये कुत्तों का ही है। कुत्ते कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तो हम यहाँ पहले से सो रहे हैं, तो तुम कैसे आए, हम एक दिन पहले हैं यहाँ आए और तुम अभी आए हो, तो हमारी जमीन हमारी जगह है, तुम यहाँ कैसे है, तो वो भौंकते हैं, तो तुम भारत छोड़ के जाओ, ये भारत हमारा है। तो सब जो है मतलब ये क्या है, कुत्ते कुत्ते बिल्लियों वाली मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। जिस तरह बिल्लियां तथा कुत्ते अपने जीवन के वास्तविक हित को ना जानकर अधिकाधिक अज्ञान में फंसते जाते हैं, उसी प्रकार तथाकथित शिक्षित व्यक्ति जो अपने निज को या जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता, भौतिकता में अधिकाधिक मग्न होता जाता है। तो आप समझ रहे हैं? तो अपने अपने निज को नहीं जानता, अपनी असली पहचान नहीं जानता है ना। तो अगर ये शरीर अनित्य है और जीव नित्य है, तो मैं कितने कितने शरीरों में जा चुका हूँ और कितने कितने स्थानों में रह चुका हूँ, कैसे कैसे इस स्थिति में रह चुका हूँ है ना, फिर कैसे अपनी पहचान करेगा इस शरीर के साथ है ना। तो यह आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव प्रहलाद महाराज हर एक को वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उपदेश देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि विशेष अवस्था को प्राप्त करने पर वो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करे और इस तरह मुक्त हो ले, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में विस्तार से की गई। तो रूपा जो है यहाँ बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज जो है मतलब क्रम से आगे आगे बता रहे हैं। तो वर्णाश्रम धर्म है ये प्रारंभिक है, वर्णाश्रम धर्म जो है प्रारंभिक ये रास्ते का जो प्रारंभ है कि जिससे कोई व्यक्ति जो है धीरे धीरे शुद्ध होगा है ना। तो चार प्रकार के वर्ण, चार प्रकार के आश्रम में अपनी अगर कोई व्यक्ति पहचान करता है, हालांकि भौतिक पहचान है, ये भी भौतिक ही पहचान है ना, जीव की पहचान नहीं है। लेकिन एकदम से कोई व्यक्ति जो है अपनी असली पहचान में नहीं आ सकता। हम बुद्धि के द्वारा तो मान सकते हैं कि मैं नित्य हूँ, आत्मा हूँ, तो भी उस धरातल पर हम कार्य नहीं कर सकते हैं। तो वर्णाश्रम की जो पद्धति है ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ सुरक्षित तो हो जाता है, कुछ तो ऊपर उठता है। चार प्रकार के वर्णों, चार प्रकार के आश्रमों में से किसी में भी अगर अपनी स्थिति मान लेता है तो उसके आधार पर वो चलते चलते उसका शुद्धिकरण होता है। और आगे प्रभुपाद कहते हैं संन्यास ग्रहण करना, तो संन्यास ग्रहण करने का मतलब भगवान की पूर्ण शरण लेना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, सार्वभौम प्रभु आपकी ओर से है, धन्यवाद। अच्छा और हाँ दानव दैत्य असुर राक्षस, असुर का तो मतलब है जो भगवान के विरोधी होते हैं, असुर हैं है ना। तो कोई व्यक्ति जो है असुर हो सकता है जो भगवान का विरोधी हो, साधु शास्त्र आचार्य इनके विरुद्ध चलता है तो वो असुर कहलाता है। लेकिन जो दानव है वो दनु के वंश में, जो दनु कश्यप मुनि की पत्नी है, ठीक है ना, हाँ तो वो अलग बात है कि मतलब उन्होंने आसुरी सिद्धांत ग्रहण किया, लेकिन दानवों में भी कोई भक्त निकल जाए है ना। और उसी प्रकार से दिति के जो पुत्र हैं तो ये हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, तो दैत्य कहलाए, तो दैत्य तो दिति के कारण कहलाए है ना, लेकिन वे असुर निकले वो अलग बात है। उसमें प्रहलाद महाराज जो है मतलब निकले, बहुत प्रहलाद दशाश में दैत्य आना, तो भगवान ने देता मैं प्रहलाद हूँ है ना। तो दैत्य का मतलब नहीं होता कोई असुर हो, दिति के वंश में पैदा हुआ है ना। और राक्षस जो है, ये यक्ष और राक्षस ये एक अलग ही मतलब एक वर्ग है जो ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हा? तो इनमें से जब ये लोग जो उत्पन्न हुए ब्रह्मा की जंघा से उत्पन्न हुए, तो ये ब्रह्मा जी के साथ सहवास करने के लिए तैयार हुए। तो ब्रह्मा जी जो है बड़े लज्जित होकर और भागे है ना। तो उनमें से जिन्होंने कहा मां रक्ष इनकी रक्षा ना करो, इसकी रक्षा ना करो, तो राक्षस कहलाए। और जिन्होंने कहा भक्ष भक्ष इनको ग्रहण कर लो खा लो, तो यक्ष कहलाए। तो यक्ष और राक्षस ये जो वर्ग है ये ब्रह्मा जी के शरीर से ही उत्पन्न हुए, जिनमें हेति और प्रहेति नाम के जो है दो राक्षस सबसे पहले हुए थे, ठीक है ना। हेति और प्रहेति ये दो राक्षस सबसे पहले हुए, फिर उनके वंश में फिर और राक्षस हुए, तो काफी विस्तार, राक्षस वंश का अलग विस्तार हुआ है, ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? वर्ण आश्रम, चार वर्ण और चार आश्रम है ना, तो चार वर्ण और चार आश्रम इनकी रचना भगवान ने की। भगवान ने मनुष्यों का जो है विभाजन चार वर्ण और चार आश्रमों में किया है, और उनके जो है नियम बनाए, और भगवान क्या कैसे ब्रह्मा जी ने ये नियम बनाए। तो अभी तो वर्ण जो है हम जाति को बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण है, वास्तव में जाति नहीं है। अभी हमने उसको जो है जाति का नाम दे दिया, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति। और जाति का मतलब क्या है, जो पैदा हो ब्राह्मण के परिवार में वो ब्राह्मण, क्षत्रिय परिवार में जो पैदा हो वो क्षत्रिय। लेकिन वास्तव में भगवान ने जाति नहीं बनाई है, भगवान ने वर्ण बनाए, ठीक है ना। तो गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया कि चार वर्ण जो है किस प्रकार से हैं, और ये स्वाभाविक हैं जो कर्म है वो क्या है, ये भगवान ने गीता में बताया है, तो आप गीता से पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से चार आश्रम है, ये जीवन की चार अवस्थाएं हैं, ये आध्यात्मिक वर्गीकरण है जीवन का, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जीवन के चार आश्रम हैं। तो इनके लिए तो फिर अलग से समय चाहिए, आप उन भक्तों से पूछ सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? आजी
हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रभु जी कई बार बड़े बड़े साइंटिस्ट उस यात्रा पर भेज देते हैं विमान को, और वही साइंटिस्ट भगवान के जाकर प्रार्थना करते हैं कि इसको कामयाब बनाना, इसको मतलब सफलता प्रदान करना। जैसे मंगल यात्रा पर अपना जो विमान छोड़ा गया उसका एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बालाजी में जाकर प्रार्थना करता है कि भी इसकी मंगल कामना हो, जबकि भगवान कहते हैं ये सब तुम्हारा बेकार जाएगा है।
फिर भी ऐसा है, समझ गए, फिर भी अगर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो वो जो है पुण्यात्मा है। भगवान कहते हैं पुण्यात्मा, चार प्रकार की पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। किसी भी कारण से अगर वो प्रार्थना करे भगवान की, वो चाहे उचित हो ना उचित हो, फिर भी प्रार्थना कर रहा है तो वो पुण्यात्मा है। कम से कम भगवान से बात तो कर रहा है, कम से कम भगवान के निकट तो आ रहा है, कम से कम भगवान का संग तो कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए कुंती महाराज तो कहती है ये पुण्यात्मा ही होता है कोई अगर भगवान से प्रार्थना करे। असुर लोग तो भगवान के शरण नहीं लेते, जैसे रावण था तो कितना बड़ा असुर था कि वो जो है भगवान राम के शरण नहीं ले रहा है, जबकि कितने संकट में पड़ गया, ठीक है ना। लेकिन जैसे इंद्र है ना, तो वो भी अपराध करते हैं भगवान का, इंद्र ने भी अपराध किया है, ब्रजवासियों को मार डालने के लिए ऐसी वर्षा की कि पूरे ब्रज का विनाश हो जाए। रावण ने सीता का अपहरण किया, तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं, इतना अपराध जो है उतना ही बड़ा इंद्र का भी है। लेकिन जो देवता हैं पुण्य आत्मा है, तो जब संकट में पड़ते हैं तो वो भगवान को याद करते हैं। तो भगवान की वो डर गया इंद्र और भगवान की उसने शरण ली, ठीक है ना। तो जो असुर हैं और बड़े मतलब कट्टर असुर होते हैं, दुष्कृति हैं, तो वे भगवान की शरण में आते ही नहीं। नमाम दुष्कृतम मूढ़ा, है ना। तो भगवान की शरण में आते नहीं और उनके अंदर और घमंड और ईर्ष्या बढ़ता जाता है। और अगर कुछ मानते भी तो भगवान का दोष ही बताएंगे कि भगवान का दोष है, मेरा क्या दोष है, मैं क्यों इतना कष्ट भोग रहा हूँ, ये सब भगवान की गलती, मेरी क्या गलती, आप समझे। लेकिन जो पुण्यात्मा है तो वो जो है भगवान की अगर शरण ले किसी भी कारण से, ठीक है ना, कोई गलत इच्छा से भी अगर भगवान से प्रार्थना करता है तो कम से कम वो जो है पुण्यात्मा है और उसका शुद्धिकरण हो रहा है, आप समझे। और भगवान ऐसे नहीं है कि उसकी गलत इच्छा पूरी करें, ये नहीं है, उसकी गलत इच्छा भगवान पूरी नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है या कोई चीज़ मांग रहा है जो गलत है और उसके लिए हानिकारक है, लेकिन अज्ञान वो मांग रहा है, तो उसका शुद्धिकरण तो हो ही रहा है, ठीक है ना। इसलिए कुंती महाराज तो यही मांगती हैं कि हमें हमेशा विपत्तियों में रखें, ताकि हम विपत्तियों में आपको याद करते रहें, ठीक है ना, और हमारा घमंड दूर हो जाए तो दूसरों का अपराध ना करें, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, और उससे वो पुण्यात्मा बढ़ता है, उसका पुण्य बढ़ता है, तो और अधिक वो फिर भगवान से प्रार्थना करेगा या भगवान याद करेगा, ठीक है। तो जो बहुत पुण्यात्मा होता है तो वो आगे आगे भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, ठीक है।